कोई झमार कोई कृष्ण पंचम उसमें गोपी के रूप में गाया करते और आरोह और आगो में गोपियां कृष्ण से कहते थे सा रे सा और गोपियां क्या करती थी उसी कृष्ण धाम को सप्तम स्वर में ले जाकर के जो कृष्ण के लिए भी संभव नहीं था कृष्ण साधु साधु बन गया प्रभु को बच्ची को उठाने के लिए संगीत किया किंतु भक्ति का सामान्य सुनते क्या तो देवी समाज में ऐसे कलाकार लोग हों इस विद्या को
नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय नामने गौरस्तुते कवे गौरचंद्राय राधिकायै काले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राप्तजन्तम् अनुसमते कृतज्ञं द्वैपायनो विरवकाशयाय पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतु तं सर्वभूतविजयं मुनिमान् सवैवासिनो सवैवासिनो नदिमान् प्रयाति इति तन्नमामचरणम् उत्सव संवाद से हमने कुछ प्रश्न किए और उसका उत्तर भी मैंने दिया। कृष्ण हर्षमय खुनी ने ब्रज में नरक का मथुरा क्यों आए और फिर यदि आए तो काम करने के बाद में कंस इत्यादि का वध कर धर्म की प्रतिष्ठा करने के पश्चात लौटे क्यों नहीं इसके संबंध में बदला है ये कंस का अत्याचार कहीं ब्रजवासियों पर नहीं हुआ इसलिए कृष्ण क्यों उग्रसेन जी को राज्य भाग देकर के अविध्य करके राज्य कर लौटे भी बहुत से कारण थे कभी कभी क्यों नहीं आते इसके लिए मैंने बतलाया रुपयों की गिराह आदमी ब्रजवासियों की गिराह आदमी दिशा दावा नव के समान थोड़ा सा पानी हो तो थोड़ी सी आपको बुझा देगा यदि जहां डाल लगी हो तो उसमें पानी देने पर घी का काम करता है तो एक दिन जाए और फिर लौट आए मथुरा तो उनकी देहादमी और बढ़ जाएगी फिर कृष्ण से भी सज नहीं होता इसलिए कभी कभी नहीं जाते स्वयं न जाकर के दूध भेजा इसके लिए भी हमने कहा नहीं जा सकते न जाने के बहुत से कारण हैं उनको हमने कल गिनाया था और फिर एक बात है यदि नहीं गए तो ब्रज गोपियों को और नंद बाबा यशोदा मैया राधा इत्यादि जी को मथुरा से वृंदावन से ब्रज से बुला देते बुलाए क्यों नहीं यदि जरासंध के आक्रमण के समय में कृष्ण एक ही रात में सारे मथुरा वासियों को राती रात पलक झपते ही और कहा द्वारका में नहीं जा सकती। ना सुंदर कक्षा वो बना जिस बीच में उद्यान सड़े चौड़ी चौड़ी पाठशाला स्कूल और क्या क्या बन गया। एक रात में ही वो रात में तो एक मथुरा और दूसरे दिन देखा जयकृष्ण मंदिर के साथ में एकदम चले गए। उसके लिए क्या संभव है, अखंड घटन पति की शक्ति संपन्न है। तो इन ब्रजवासियों को नंद बाबा मैया अपने सखाओं को और विशेष करके गोपियों को राधा विशाखा इत्यादि को बुला क्यों नहीं लेते, वहीं पर बुला लेते और एक साथ में रहते। इसमें भी एक अरस संपर्क होता है, शायद आप लोग समझे कि नहीं समझे। रसिक समझे, जैसे गुरु ऐसे हो जो रसिक हो, जो सुखदेव स्वामी की लाइन में है, जो निगम कल पर करो गणित फलम सुख मुखा हम सदन। उद्धव जी भी रसिक नहीं बन सके, रसिकों की चरण की धूली स्पर्श करने के लिए नहीं है। तो क्यों नहीं बुला लेंगे। और संकट ये है कि शरीर बुला देते हैं वहां मथुरा में कृष्ण का क्षत्रिय वेश और क्षत्रिय आवेश है। मैं क्षत्रिय हूं, मत कुछ नहीं है, बल्कि हाथों में नहीं है, वाला जैसे वो चार बेसमान ले जाते हैं ऐसा भाव, और वो कुछ ऐसा आवेश नहीं है, उसमें आवेश है क्या लेना है, शक्ति मुख जादो है। और वृंदावन में कृष्ण का आवेश कैसा है, वृद्धि का आवेश और वृद्ध का आवेश। इसलिए हमने पंडित जी को कहा जो ये वो सभ्यता पाश्चात और हमारी सभ्यता में जरा मिल नहीं, अर्था पास हो जाता है। क्रिकेट वाले ऐसा हम तो वृंदावन में कृष्ण का वो गोपेश है, वो क्या है, वो और वहां मथुरा के जादव लोग उनको पर्दे देखने नाम पर्दे के साथ, तो वहां पर पर्दे उतारे उनके आराधन है जादवों के। अरे भाई वृंदावन में गोपियों के भजन है, पुत्र है, उनकी डाक प्रकार सुनते हैं, रस्सियों से कोई बांध देता है, कुछ परम देवता ये ब्रज में नहीं है, उसके प्रयोग परम देवता ये माता पिता और ये भाई बंधु। यादव कृष्ण की पदमूली सिर पर धारण करके परम की उपासना करते हैं यादव, विशेष करके उद्धव इत्यादि। और ये ब्रज के जो कृष्ण है उनके कंधे पर तथा लोग बैठ गए, तब चल चल खट 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 और पैर हंसते हैं, कृष्ण को पराजित कर देते हैं और कृष्ण उसमें से बड़े पुराने करते हैं। देवी मान कंस के मारने के बाद में कृष्ण उनके चरणों के गिरे प्रणाम कर रहे हैं, सौ कुछ वो कर रहे हैं, और देवी जी सहमित हुई है, जल देखा है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, जन्म के समय हमने चतुर्भुज रूप में देखा है, और आज ही कंस को इतना बड़ा भाई भगवान हजार हाथियों का बल कंस के अंदर, और उसको छठ गिरमार करके गिरा दिया चारों मंत्र जैसे बालवानी को, इसलिए उनका प्रणाम नहीं रह सके कृष्ण का। और रंगियों को कहते क्या करती है, रंगियों के बाद देती है, कभी अभी फिर जाएगा बेंच लेकर के कर गंदा लड़का बंदर बंधु ऐसे जैसे कुछ परम हो, और वो फिर चाहते हैं कि भैया को भी चढ़ा। एक बार नाथ भी है ब्रज में यशोदा जी के घर, ब्रह्म को देखने के लिए दर्शन करने के लिए, और देखा कृष्ण रोज कोट कर रहा जो, और यशोदा मैया से कर खबर था तुमको कभी गोदी नहीं दूध नहीं पिया, बाप गंदा लड़का है, अभी तुमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और तुम मट्टी में पूरी दर्शन कर लो। ये यशोदा कहने कौन सी शक्ति, लाल और ब्रह्म तुम्हारे आंगे में लो क्रोध हो रहा है तो उसे डरा समझा रही है। तो ये प्रतिदिन ये कृष्ण वो परब्रह्म है यहाँ पर है। तो जो ज्यादा लोग भोग लगाते हैं भोग अर्पण करते हैं और वही प्रेम में नंद बाबा बैठ करके अपना जूठा खिलाते हैं। देखो तो कैसा भाव, आप लोग अभी कृष्ण को अपना जूठा नहीं खिला सकते, वो वैसे ही जा रहे हो नहीं खिला। और यशोदा मैया क्या करती है, सिर्फ नंद बाबा की गोदी में दे देती है कृष्ण दाऊ जी को और अपने खाते भी हैं, उनको खिलाते हैं फिर अपने खाते हैं। कृष्ण ब्रज में खा करके तभी बोला वो मुख नहीं धोते वो चिड़िया बक्स हो गए। रीति नीति वेद की सात दुनिया ये सब कहां उड़ जाती है, ये ब्रज है ब्रज में रोगी। कृष्ण को कोई जाति देगी कोई विधि है और कृष्ण धोकर चोटे लंबर मिथ्या भाजी अंतर काला बाहर काला ये कौन कर सकता है। ब्रह्मा जी सब स्तुति करते हैं तो वो उनके तरफ में मुख नहीं देते और यहाँ ब्रज की गायों को सुन करके परम आनंदी कहलाती उसको करके सुनते हैं। यह है ब्रज उदा जी भी आए थे तो ब्रज की ऐसी महिमा नहीं क्यों देखा दूर से। देखो तो ये बता रहा था कि यदि ले जाए उदा जी कहते हैं जैसे मैं तुमको ले सकता हूँ कृष्ण तुमको बुलाए तो कहते हैं ये संभव नहीं अस्पर की भूमि और माधुर्य वाली भूमि ये जैसा गुरु का वर्णन किया एक जगह लाने के रसंग का उपस्थित होगा। रसंग का क्या यदि अपने घर में है अपनी पत्नी के साथ में और मैया वहां आ जाए रात में तो क्या होगा रसंग का होगा ना। मैया को पलंग से उतर करके मैया को प्रणाम करना पड़ेगा और पत्नी की सामने एक तरफ में खड़ी हो जाएगी और यदि मैया नहीं जाएगी पलंग पर दोनों है नग्न वस्त्र है नग्न है कि कैसे हैं उनको कोई भी परवाह नहीं एक दूसरे के अंग बनेंगे ये रस संकट है। तो ब्रज में ये यदि जाए नंद बाबा वहां पर सामने आए ये तो जादो की सभा में ये जाकर मिल रहे या द्वारका है वहां पर कृष्ण सोने का उनको पहने उनके चारों तरफ में दस बीस अंगरक्षक होंगे और ब्रज में ये सब की कोई यदि गोपियां आए और देखेगी कि 16,000 रानियां वहां की बैठी हुई है और 16,000 एक सवार तो गोपियां क्या करेंगी संकट हो जाए। इसलिए गोपियां ब्रज को नहीं छोड़ती हैं कृष्ण छोड़ दें बोले प्रति एक पत्नी आगे नहीं है वैसे तो लिखा है वृंदावन परित्यज्य पाद एकम कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते वो द्वारका भी या मथुरा कृष्ण छोड़ करके जाते नंद के इसको भी सात्विक रूप में समझना बड़ा कठिन है। अभी जब इस प्रसंग में बोलने लगे हम तो मेरा जो विचार है वो रह जाएगा इसलिए मैं संक्षेप यदि इसके लिए 15-20 दिन का नियमित समय कभी हो तो इस पर भी हम विवेचना कुछ कर सकते हैं।
अगली बार से
तो गोपियां नहीं आ सकती नंद बाबा नहीं आ सकती संभव नहीं उनके लिए गोपियां उनके साथ में कैसे रह सकती गोपियां गोपियों के साथ 16,000 राजियों के साथ में और इसकी अनुभूति द्वारका की जो 16,000 एक सवार रानी अनुभूति आ सकती वो देखते कि कोई रुक्मणी सप्तभाम कृष्ण नहीं करते सब क्या करते हैं राधा कृष्ण गोपी कृष्ण इत्यादि। अब इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे रूप गोस्वामी का भक्ति की परिभाषा युक्त एक श्लोक भक्ति की शोका है। शंकर के मंदिर में गए शंकर जी के और चौकदार दबाने लगे शंकर जी यदि मेरी लड़की की शादी हो गई तो 1 रुपए का बताता आपको चढ़ा ये भक्ति हुआ कि नहीं। ये तो भगवान को से अपना हटाए कर रहे हैं ना अपनी कामना उसके लिए प्रसन्न होने के लिए 1 रुपया का बताता बांट दिया उसे तो तुम्हारी लड़की की शादी करा दे ऐसे जो शिव के पास में जाते हैं या देवताओं के पास में भी जाते हैं, भगवान के पास में जाते हैं, अधिकांश लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए वो रुक जाते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण को भक्ति करते हैं, ये उनके दिमाग में आता ही नहीं। ये तो जब ही सदगुरु ऐसा हो समझाए बुझाए और उनके संग में कुछ दिन रहे तो समझेगा। कहते हैं अन्य अभिला ज्ञान का मार्ग जाना प्रसन्न है। अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति पहले इसी को समझा जाए। कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम कृष्ण या कृष्ण के जो अवतार हैं प्रकाश विग्रह हैं, जैसे राम है विष्णु है सरस्वती वामन इत्यादि, विशेष करके उसकी अंतिम अवधि कृष्ण जो कृष्ण को अपना आराध्य मानकर अपने तन से मन से वचन से और इनसे अतिरिक्त भावनाओं से इसके भी अतिरिक्त आत्मा से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही नयन तज धारावत तज धारावत अभिन्न गति से उनका चिंतन करें मनन करें सेवन करें। जब भी आपको शंकर जी की भक्ति करते हैं ठीक है अपने स्थान पर, किंतु उसको भक्ति नहीं कहेंगे। क्यों? कृष्ण ही भगवान है और शंकर इत्यादि जो है हनुमान जी हम लोगों के प्रण में है, उनके कृपा से भगवत कृपा मिलेगी ये बात तो ठीक है, किंतु स्वयं भगवान नहीं। शंकर जी ने कभी राज किया कर सकते हैं? वो गोपी बन करके वृंदावन में पधारेंगे और तपस्या करेंगे उनका राज। यहाँ तक कि रामलीला में वही शंकर जी कृष्ण की सेवा करने के लिए राम का बन करके हनुमान जी बनते हैं। हनुमान जी अलग से नहीं है, शिव जी भी वैसे ही। तो ये गोपी बन करके उनकी सेवा करना ये अच्छा मानते हैं। इसलिए शंकर की जो भक्ति होती है वो गुरु भक्ति है और कृष्ण की भक्ति ही सर्व। तो कृष्ण की सेवा के लिए तन मन वचन भावनाओं और आत्मा के साथ में नयन सत्य बनाता हुआ कोई कृष्ण का सेवन करे। अनुकूलेन कृष्णानुशीलन अनुशीलन अनुशीलन माने होता है अनु माने निरंतर, अनु माने अनुगत्य वे किसके अनुगत्य रहे, जो उसका सर्वश्रेष्ठ सेवा किया सेविका है उसके अनुगत्य रहे निरंतर। एक सेकंड का भी अंतर न हो तब तो उनका सेवन या भजन सजग होगा। भजन माने भी और कुछ नहीं सेवा, भजन माने ध्यान कर रहे हैं ये सब नहीं। उसको मन तथा योग दशरी उनका कौन ध्यान रहेगा, बल्कि कृष्ण ध्यान करे गोपियों का। गोपियां ध्यान क्या नहीं कभी हम ध्यान जो भी नहीं जो ध्यान इसलिए कहते हैं अनुशीलन भजन माने भी होता है सेवन। एक आदमी ध्यान लगाता है सब कुछ करता है कृष्ण का की सेवा नहीं करता तो इसका तात्पर्य क्या नहीं कुछ है उसे लाभ तो होगा किंतु वह लाभ नहीं होगा जो प्रतिवासियों को लाभ होगा जिसके प्रेम से वशीभूत हो जाते। तो ये तो हुआ किंतु और एक कहते हैं आनुकूल्य अन्य सेवा करने को तो भक्ति कहते हैं किंतु आनुकूल्य किस लिए कहते हैं? आनुकूल्य माने प्रतिकूल रूप में ना हो, जो कृष्ण चाहते हैं उसके अनुकूल सेवा। ऐसे नहीं समझे गए उदाहरण देकर के समझा। रामचरित मानस में वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आया है प्रसंग आया है वो प्रसंग क्या कौशल कहने के बातें महाराज दशरथ के अनुमोदन से राम लक्ष्मण सीता जी दंडकारण चित्रकूट में पधारे। भरत आए माता को धिक्कार दिया और बोले कि अब से तुम हमारी मैया नहीं मैं तुम्हारा बेटा है। अब बेटा मत कहना मैं तुमको राजरानी कहूंगा किंतु मैया नहीं और सब वहां का जो है बाकी उनको बसी देवी को और सब लेकर के गए किस उसने उनको मनाने के लिए भैया तेरे बिना हम एक सेकंड नहीं कभी भी नहीं सकता अकेले पिता का बड़ा भाई राजा होता है, इसलिए आप चलिए हम अभिषेक ईसाई समग्र अध्याय आपका अभिषेक किया जाए। सही होगा उनका वहां पर महाराज कनक की सुधार सुने जा दीदी सुधार। पहले दिन तो वो लोग जब आए तो सुना जी महाराज दर्शन राम राम आराम कर सकते थे, राम जी बड़े शोक में आप हो गए और उन्होंने गोमती नदी में वहां भी और उन्होंने उनको भी प्रदान किया, जल प्रदान किया अपने पिता की। और दूसरे दिन में ये सभा होने वाली थी, भले भी अपना वक्तव्य रहेंगे तो राम जी अपना वक्तव्य रहेंगे। रात के समय में कौशल्या माँ के पास में भर दी गए, उनके चरण में ही करते रोने गए, मैया राम तुम्हारी बात नहीं चाहू सकता, इसे मैया से कहो आदेश दो कि अयोध्या में लौट आए और आगे बात सुनाए, हम लोग उनकी सेवा तुम्हें कैसे कर सकती हूँ, वो भी तो अपने धर्म पथ में है, इसे मैं नहीं कर सकती, तो क्या मैं अन्याय कर रहा हूं? नहीं, न्याय नहीं कर रहा, तुम्हारी ममता राम के प्रति अत्यंत अधिक है, अनुराग है, स्नेह है, ये बात तो ठीक है, किंतु वो भी धर्म पथ में है, वो धर्म पथ में राम का धर्म पथ ऐसा है अपने प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, वो एवरेस्ट माउंटेन है और इनका प्रेम जो है राम के प्रति वो महासागर एंजल है, अनंत अगार ये समुद्र है धर्म का प्रेम, अगार प्रेम में एवरेस्ट डूब सकता है प्रशांत महासागर, किंतु डूबने पर भी सबसे मत नहीं होगा, इसी तरह से भक्त जी का प्रेम अगार है, उसमें राम तो डूब जाएंगे बात तो ठीक है, किंतु अपने धर्म पर से एक भी चूर भी नहीं सके, अगर मैं कैसे उसको कहूँ जो धर्म पर छोड़ सके, और जो बहुत रोई की जाएगी मेरी बात भी समझो बेटा, तुम भी हमारे पुत्र हो, मैं कैसे एक आदमी को ऐसे हो धर्म पथ से हटने के लिए, इसके बाद में तो ठीक हो गुरु वशिष्ठ के पास में गए, गुरु जी आप कृपा करके राम से कह दो हमारे भैया जी से जो अयोध्या लौट है, आपकी बात को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते, अवहेला नहीं कर सकते, आप एक बार आदेश दे दीजिए जरूर उनको मानना होगा, बात तो ठीक करते हो हमारी बात को कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा, किंतु मैं कैसे कहूँ, वो भी बड़ी बात वो धर्म पथ पर है, तुम प्रेम के समुद्र हो बात तो ठीक है, किंतु आवेश में मैं जानबूझ करके राम को क्या अन्याय करने के लिए तुम धर्म पथ छोड़ने के लिए, तथा ये बात हो सकती है तुम उसके प्रतिनिधि बन करके बनने जाओ और यदि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो ऐसा ऐसा मैं कुछ उनसे बातचीत करता है, समझ रहे हैं ना, जरिए प्रतिनिधि होकर के तुम उनके लिए बनने जाओ और वो यहाँ रहे, तो ऐसा बात है बड़े खुश हुए, ठीक है मैं उसके लिए बन लेता, क्योंकि ठीक कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता वो ले जाए, फिर सुनैना जी के पास में गए, देखो कल की सभा होगी और उसमें निर्णायक विचार उनका होगा, सब लोग उन पर निर्भर रहेंगे, महाराज जनक जो कहेंगे हम दोनों मानते हैं, तो उस समय में आप अपनी पुत्री का ख्याल रखें, सीता बंधन में जोड़े आप चाहती हैं उसको ग्रेट ग्रेट जो कभी राजभवन से निकली नहीं, जिनकी महावर भी सुखी नहीं की वार्ता सुखो मंजन और वहां पर पत्थर किले और दीप और जितने दानव राक्षस ये सब हैं आपकी बेटी जाए जाती है तो उससे जाया कम है कि वो लौट जाए, अरे ये तो मैं नहीं कर सकती, किंतु हाँ ये बहु भी जरा ख्याल रख पिता पर बात में जाए हटके उसको कष्ट हो तो रास्ता ऐसे ही मिल गया तो ये इनकी बात नहीं सुनी, वो अपने ममता के समुद्र में अनुराग के समुद्र में ऐसे डूबे हुए हैं जो और उनको कोई चिंता नहीं, मानो कोई जैसी ध्रुव तारा देख रहा है दिन का उत्तर की दिशा, उसको ज्ञान नहीं देखा क्या है उधर क्या नहीं, इसलिए उस समय में जब दूसरा दिन हुआ अयोध्यावासी लोग बैठे, ऋषि महर्षि एक तरफ में बैठे, एक तरफ में वशिष्ठ जी बीच में बैठे दोनों के गुरु हैं और एक तरफ में महाराज जनक कहते हैं ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं उनके समय वैराग्यवान और ब्रह्म तत्व को जानने वाला उस समय में दूसरा नेता सुखदेव गोस्वामी जी उनसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जाते हैं। तो वो भी बैठे वशिष्ठ जी ने कहा रघुकुल के ऊपर में बड़ी भारी विपत्ति आई बहुत बड़ी भारी मानो वो समुद्र में वो आंधी विराट आंधी में फंस गई हो कभी किधर कभी इधर धर्म अभी समय कोई इनको बुद्धि देने वाला नहीं भगवान की बड़ी सी बात की जो आप महाराज जनक बता रहे हैं। अब राम को और भरत को क्या करना चाहिए ये निर्णय आपको देना है। उन्होंने कहा कि मैं तो छोटी बुद्धि का हूं फिर मैं आराध्य देव से ये प्रार्थना करूंगा जो हमको सब बुद्धि देखे वैसा निर्णय। उन्होंने पूछा कि मेरा निर्णय राम तुमको स्वीकार होगा। उन्होंने कहा जी पिताजी तो रहे नहीं प्रतिष्ठ जी अभी कुछ बोल नहीं रहे जिसे आप ही हमारे माता पिता और गुरु के स्थान में भी हैं जिसे जैसा आप देख रहे मैं इसी पर स्वीकार कर देता हूँ। इधर मैं भरत की तरफ में देखा उन्होंने कहा जैसे आप हमारे माता पिता हैं आपका विचार उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे जैसा आप आदेश देंगे वैसा होगा। ऐसे तो उन्होंने ध्यान किया अपने गुरु का शंकर जी को ध्यान करके थोड़ी देर के बाद आंख खोल करके बोले बोले देखो भरत मैं इस सभा के बीच में बोल रहा हूँ तुम्हारा अनुराग अथा अनंत है तुम्हारा राम के प्रति अथा अनुराग है इसलिए तुम्हारी जीत हुई राम की हार नहीं हुई। प्रेम नहीं जानता है नीति प्रेम नहीं जानता है औसत प्रेम प्रेम की बात नहीं जानता इसलिए तुम्हारी जीत हुई। सब अयोध्यावासी भरत इत्यादि बड़े प्रसन्न हो गए बहुत प्रसन्न हो गए। राम गंभीर मुद्रा है उस समय में ठीक हो गए तुम्हारी जीत तो हुई किंतु एक बात करो जो आराधक है जो आराध्य है उसमें एक संबंध होता है प्रेम का संबंध होता है प्रेम की भी अपनी मर्यादा है वो क्या है सेवक को ये देखना है अपना सुख दुख नहीं देखना है अपना कुछ विचार नहीं करना है क्या उसको देखना है हमारा आराध्य किस बात में सुखी हो सकता है ये देखना चाहिए। तो विचार करो जो तुम्हारे इष्टदेव राम हैं हम किस विषय से क्या करने से सुखी होंगे ये तो जरा मुझे पूछो। भारत जी थोड़े देर के लिए दुख हुए और फिर साष्टांग प्रणाम किया महाराज जनक के चरणों में मेरी आंखें आज खुल गई। अभी तक मैं अपना विचार करता हमारे दृष्टि से राम कैसे प्रसन्न होंगे किंतु राम की दृष्टि से राम कैसे प्रसन्न होंगे ये मुझे पता नहीं था। आज आप मेरे गुरु मैं आगे खुल इसे सेवा का कर्तव्य क्या है उसका किस्त दे द्वारा वो क्या चाहता है वो किसमें प्रसन्न होगा। भर जी रामचंद्र जी के आगे गए बोले कि आज मेरी आंखें अब तक मैं आता था मैं अपना सुख सुख देखता था कि आप वहां जाने से मुझे बड़ा आनंद मिलेगा सब अयोध्या वासी को मिलेगा किंतु आपको जाने से कष्ट होगा क्योंकि आगे मैं नहीं सोच रहा था प्रभु आप बतलाइए आप कैसे प्रसन्न होंगे क्या कर रहे मैं उसको मैं मानता। रामचंद्र जी ने कहा तुम्हारी तो जीत जनक जी ने कारी की है ये तुम जीत गए तो तुम्हारी जीत हो गई है तब एक बात है तुम्हारी जीत होने से मैं अयोध्या का राज्य अभी देख हमने ले लिया अयोध्या का मैं राजा हूँ अभी जन किंतु मैं प्रसन्न होऊंगा अयोध्या का राजा होने पर भी तो मेरे प्रति प्रतिनिधि बनकर और अयोध्या का मंत्री के समान उसका अधिकार संभालो मैं 14 वर्ष का पिता का आदेश मान कर दिया जाता हूँ इसमें राज्य सभा चरित्र यह है सेवा यह है भक्ति इसे श्लोक में इसकी बात कही गई है अपना सुख मत देखो अन्याभिलाषिता शून्य जितनी प्रकार की कृष्ण भक्ति से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारा तन मन वचन का प्रयास है भावनाओं का प्रयास। कृष्ण को सुख देने के लिए अपने निर्णय इसलिए अन्ना पिता पिता है, लौकिक पारलौकिक कोई विशेषता अपने लिए नहीं, पास में नहीं। और दूसरी ज्ञान कर्म आदि खराब सही रहते हुए जिनका निर्माण जरूरी है तब तो हम भी करेंगे, अगर मारे गए तो फिर क्या होगा। इसलिए जीवन का निर्वाह करना भी जरूरी है, चाहे गृह पर आश्रम में रहकर दीक्षा वृत्ति से, चाहे बाड़ी के व्यवसाय नौकरी इत्यादि, ये तो करना है। किंतु भाव वही रहे जो कि श्लोक में बदला है, उसके लिए कर्म के द्वारा भक्ति थकने जाए, ज्ञान के द्वारा भक्ति थकने जाए और जो तपस्या इत्यादि के द्वारा भक्ति न थक जाए। अधिकांश लोग ऐसा ही करते बिना कर्म के लिए भक्ति कहते हो, अरे भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र, इसके लिए ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। एक महामूर्ख आदमी भी भगवान की भक्ति कर सकता है और एक महाविद्वान आदमी नहीं कर सकता। जितने फास्ट वर्ष में विद्वान जाइए, हरिद्वार में जाइए, काशी में जाइए, दक्षिण कांची या काशी में बड़ी बड़ी अगाध विद्वान है, वो क्या करते हैं, हम ब्रह्मासी सत्सम असी नहीं, वही ब्रह्म सारे जगत को सर्वम खोली दम। यदि सर्वम खोली दम ब्रह्म ही हो गया, तुम ही ब्रह्म हो गए, तो भक्ति कहाँ रही। इसलिए श्रीमद् भागवत में इसका खंडन किया गया, ये भक्ति हम कृष्ण अपने लिए कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये कह सकते हैं सत्सम असि सत्यतम असि तुम उठते हो, ये उत्साह है। लोग लगा देते हैं कि तुम ही वही हो, तो तुम्हें तो बोल कैसे रहे, तो तुम दुर्मी करके एक हो जाएगा। ऐसा आज तक जगत में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो किसी चीज में किसी को चीज नहीं है। एक उदाहरण के लिए बताओ, एक ग्लास पानी है भरा लो, उसमें पानी डालो दूसरे ग्लास, तुम्हें ले आएगा पानी, पानी नहीं जाए। यदि पानी में पानी मिलकर के एक हो जाता तो वो ग्लास से गिरता नहीं। अब उस हरे हुए ग्लास में पानी दो, मालूम तो होता है नहीं रहा, क्यों मिला नहीं, क्या हुआ, गिर गया। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। उसी तरह से सारा संसार कृष्ण में है और सारे संसार में कृष्ण है, किंतु कृष्ण और जीव एक। इसलिए भक्ति में ये भाव बनता है सेवक और सेवक, सेवक सिद्ध भाव भी भवन करे। इसलिए कृष्ण स्वयं अपने तो सिद्ध हो गए और अपने आधे अंग को राधा जी और सखियों के रूप में बदलकर और प्रकट होकर के अपने से ही अपनी सेवा करते हैं, नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को इन भावों को समझना जरूरी है। ये प्रेम कृष्ण होगा, प्रेम मैंने अभी बदलाया, कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण ही, को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की भक्ति। आगे इसकी और भी कुछ मैं कहूंगा, अभी चतुर्वेदी जी एक और कुछ बड़ी रस वाली सुनाएंगे। मन मना भव मत भव मदयाजी मान नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रतिज्ञानो भूयः। कृष्ण अर्जुन के कहने पर पहले गीता का प्रतिपादन कर बैठा, इसके बाद में गूढ़ आत्मतत्व भगवत गूढ़त और उससे भी गूढ़तम और उस गूढ़ों समूह में भी समान एक श्लोक में इन्होंने चरित किया। मन मना भव अर्जुन मन मना भव, मन मना भव किसको कहते हैं, मत मन भव, अपना संपूर्ण मन हमने लगा दे, मन उसका दूसरा कोई डर है कि दल कर जाए, या ऐसा करते हैं कि अपनी सेवा से मेरा मन अपने में ऐसा लगा दे कि खुद मेरा मन भी दल कर। उदाहरण क्या है, गीता में इसका उदाहरण दे दिया, गीता में थ्योरी के रूप में प्रतिपादन किया है तत्वों का, किंतु उसका उदाहरण नहीं दिया। भक्त कहा, भक्तता कहा, भक्ततम कहा और तत्व कहा, किंतु उदाहरण नहीं है। उसका उदाहरण गीता भागवत में कभी क्योंकि व्यास का लिखा हुआ गीता है और मार्गी की लिखाई लिखी हुई श्रीमद ये भागवत है। समस्त वेदांतों का सार, उपनिषदों का सार, गायत्री का अर्थ और महाभारत का तात्पर्य सब कुछ वेदों में से ही श्रीमद भागवत में ही ब्रह्मसूत्र का भाग से भी। तो उसमें कह रहे हैं मन मनाभाव। मन मनाभाव का उदाहरण क्या है? विश्व एक ही नहीं है मन मनाभाव का, बड़े बड़े भक्त लोग हैं क्योंकि इसका उदाहरण है प्रेम। जैसे सुनो मन जी से, कोई नवेली ब्याह करके आई नंदगांव। नवेली समझते हैं? बिल्कुल नहीं। उसको साथ में समझाया यहाँ पर एक काला सर्प है, जरा बचकर क्या करना, यदि काट दे किसी को तो उसका जीवन भरने कहीं नहीं उतरता, वो ऐसा उसका विषय कभी नहीं उतरेगा। उसे सावधान था, उसने पहले से वो कृष्ण काव्य सर्प का नाम तो सुन रखा था किंतु अनुभूति नहीं थी कि अभी देखा कभी सुना है। और ब्रज में आई तो सभी बस काली की ही बात करते हैं। कृष्ण देखा जिसे उसकी पूरी आकांक्षा है, जो मैं उससे मिली तो जे जथान माम प्रसन्न के काम कर सको मैं जाऊँ जन जिसकी रही भावना जैसे हरी मुहूर्त देखा दी। कृष्ण उसकी मन की भावनाओं को समझ गए। अच्छा जैसे पहले उसे मिलता है लाख लाख गायन बछड़ों के साथ में आ गए। बलदेव जी सिंगा बजाते थे जरा पीछे और कृष्ण कहे यार बंसी बादल करते हुए सखाओं से मिलकर बढ़ा पीड़म नटवर बहु कर्ण जो कर्णिकारम बृहस्पतिवार का कनक कपिल जयंती रंधान रेणु अगर सुधया सूर्य बृंदारमणम सपकर्मणम बचनों को चलाते देखा था जरा कृष्ण दूर। ये कृष्ण को दर्शन करना चाहती है, घर के किसी काम में लगी थी और मैया पारा दे रही थी घर से न निकले तेरी को। ये किसने कहा कि बंसी की आवाज सुन रही है, आदेश करके मैं थोड़ा जाकर के उसका दर्शन कर हमें खबर बात मत जाए तो तुम्हारी बिटिया क्यों गई चली गई अपनी बिटिया का मना नहीं किया और हमको मना कर रही है और आप ही करेंगे जो तुम यही हो और मैं जाऊंगी आप उनको देखने के लिए जा रहे हैं तो मेरे ही नीचे अरे तुम अभी करती है पकी हुई नहीं है इसलिए मैं कहती हूँ ना कि तुम घर से ना निकलो किंतु मैं ये घर से निकालने के लिए यही होगा आप निकालिए या रखिए या आपके मर्जी पर किंतु मैं तो जाऊंगी। तो निकल करके दरवाजे पर आए और दरवाजे से एक तक घरोखे से एकदम अधीर मैं उसे देख रही है और कृष्ण ने देखा कि वो नवेली आई हुई है दरवाजे पर खड़ी। उसने एक बछड़ी का पूछ उसकी पूछ थोड़ी तेज पर और वो कुत्ता हुआ उधर ही आया जिधर में कृष्ण जा रहे ठीक दरवाजे पर आए और वो भी कृष्ण से एक चक्कर के कृष्ण को निहार रही निकट में आए और अपनी बंसी से उसको ऐसे पड़ता उठा दिया और फिर आंखों में आंखों मिला करके उसका हृदय लेकर चला। जब चले गए पर मैं एकदम हो गई कृष्ण चले गए बछड़ी चले गए सखा लोग चले गए और वही एक तक खड़ी न हिलती है न उस समय में उसके साथ अरे क्या तुमको कहा था ना ठीक वही हुआ मेरी बात नहीं मैंने काट दिया ना अभी तो उतरेगा चल उसको पकड़ करके झमझोरा और पकड़ करके खेच करके घर में ले आई दही मंथन करो जाओ घर से ले आओ मछलियाँ सही से भरी पड़ी है और उसमें मंथन ही लगा दी दही मंथन करो। तो वो घर में गई और एक हड़िया उठा लाई दही है ना क्या है वो नहीं देखी देखी कि उसमें वो राई भरी पड़ी और राई को दही समझ करके मंथन कर मन तो है नहीं उसने देखा उसके साथ फिर आई क्या कर रही हूँ मैंने कहा दही मंथन कर या राई मंथन जरा कुछ तो संभालो जरा ये पंखट से पानी ले आओ भरकर फ्रिज में बहुत दूर दूर तक नमकीन पानी होते हैं बहुत कम कुओं में पानी होता है, मीठा बहुत दूर पर है, तो उसको कहते हैं पनघट। पनघट मैंने क्या, राधा जी का पन है, गोपियों का पन है, जो वहीं पर मिलना।